नमस्कार भारत, 4 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। जमानत पर रिहा छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जेएनयू पहुंचकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
देश के अंदर जो समस्या है या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं।
संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई।
उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है।
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुनिए क्या है पूरा मामला। साप्ताहिक वॉशिंगटन डायरी और समाचार पत्रों की समीक्षा, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार जमानत मिलने के बाद गुरुवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकलकर जेएनयू पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों के साथ जेल के अपने अनुभव को साझा किया और आज़ादी के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हम भारत से नहीं, भारत को लूटने वालों से आज़ादी चाहते हैं और हमें भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद और प्रांतवाद से आज़ादी चाहिए। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया है कि संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एडुआर्डो क्यूना को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना होगा। क्यूना राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ के प्रबल विरोधी हैं। उन पर कथित तौर पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास को 2 ड्रिलिंग जहाज ठेके पर देने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया है। वे संसद में अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर उच्चतम न्यायालय बाद में फैसला लेगी। स्पेन की राजकुमारी क्रिस्टीना कथित तौर पर टैक्स धोखाधड़ी के मामले में पहली बार अदालत में गवाह के रूप में पेश हुई हैं। यह मामला उनके पति उन्याकी उर्दांगरीन के कारोबारी लेन देन से संबंधित है। उर्दांगरीन पर राजकीय संबंधों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े ठेके पाने और उनमें गबन कर अपने खर्चीले जीवन शैली को बनाए रखने के आरोप हैं। राजकुमारी क्रिस्टीना ने अदालत को बताया कि घर से संबंधित सभी वित्त मामलों को उनके पति देखते थे। उन्होंने कहा, हम दोनों की अपनी अपनी व्यवसायिक व्यस्तताएं हैं और घर के लिए वित्त से जुड़े सभी मामले देखना उनकी जिम्मेदारी थी। मैं अपने पारिवारिक दायित्वों, मेरा खुद का व्यवसाय, मेरा परिवार और मेरी संस्थागत जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। ये थी स्पेन की राजकुमारी क्रिस्टीना के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में पिछले 2 सालों में शामिल हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिट रोमनी और जैन मैकेन ने इस साल इन चुनावों में उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है। रोमनी ने ट्रंप को एक दबंग और फरेबी व्यक्ति बताया जो देश को आगे ले जाने के लायक नहीं है। वहीं सीनेटर मैकेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के ट्रंप के अशिक्षित और खतरनाक तरीके की आलोचना की। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि पिछले राष्ट्रपति चुनावों में मिट रोमनी ने बहुत खराब कैंपेन चलाया था और वे बराक ओबामा से हार गए थे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देश के सैन्य नेताओं से कहा है कि वे किसी भी क्षण आदेश मिलने पर परमाणु हथियार दागने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार किम जोंग उन ने कहा है कि देश की सेना की स्थिति में बदलाव किया जाना चाहिए। एक सैन्य अभ्यास के दौरान दी गई यह टिप्पणी उत्तर कोरियाई परमाणु परीक्षण और मिसाइल कार्यक्रम के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंधों के लगाए जाने के बाद आई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बीती रात एक बार फिर नारों से गूंज उठा। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बीती रात जेएनयू परिसर में छात्रों को संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किया। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
उनको धन्यवाद, उनकी पुलिस को धन्यवाद, मीडिया के उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
ये है जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार। देशद्रोह के आरोप में 12 फरवरी को गिरफ्तार हुए कन्हैया कल अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद जेएनयू कैंपस पहुंचे तो छात्रों ने जोशीले नारों के बीच उनकी आगवानी की। कैंपस में निकाले गए जुलूस में शामिल होने के बाद कन्हैया ने एक सभा को संबोधित किया। कहा, जो मामला न्यायालय में चल रहा है वो उस पर नहीं बोलेंगे। हालांकि उन्होंने इस मामले के शुरू होने के बाद से खुद से पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दिया।
देश के अंदर जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? नहीं तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं।
कन्हैया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जन विरोधी है और उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं।
देश में जन विरोधी सरकार है, उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डम।
कन्हैया ने ये आरोप भी लगाया कि जेएनयू पर हमला समस्याएं और सवाल उठाने की वजह से किया जा रहा है।
रोहित बेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को आप खत्म करना।
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के इस मुद्दे पर संसद के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट सत्यमेव जयते का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से वैचारिक मतभेद होने के बाद भी वो मानते हैं कि सत्य की ही जीत होगी।
आपसे भारी वैचारिक मतभेद है लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव।
कन्हैया ने कहा कि उनके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, एबीवीपी के प्रति भी नहीं। इसकी वजह यह है कि वो संविधान में भरोसा करते हैं। हालांकि उन्होंने वैचारिक लड़ाई को बदलाव होने तक जारी रखने का ऐलान किया।
इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होते हैं।
कन्हैया के इन नारों की गूंज कहां तक जाती है ये वक्त ही बताएगा। कानूनी स्थिति यह है कि वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें 6 महीने के बाद फिर से जमानत के लिए अपील करनी होगी। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
जेएनयू में बीती रात इस कार्यक्रम के दौरान बीबीसी संवाददाता सुशील झा भी मौजूद थे। सुशील झा ने वहां कुछ छात्रों से बात की और कन्हैया कुमार के भाषण पर उनके विचार जानना चाहे।
मैं इस समय जेएनयू के कुछ छात्रों के साथ खड़ा हूं और वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव भी हैं। कई लोग हैं, जयंत हैं, कुणाल हैं, वलीउल्लाह कादरी साहब हैं, सनी हैं, आप अमित हैं। तो जो कन्हैया ने एक स्पीच दी अभी यहाँ पे, तो अमित आप सबसे पहले, आपके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था?
बार बार कहा गया मीडिया के द्वारा आप टैक्स यूज करते हैं, तो हम उसी किसान जो टैक्स पे करते हैं, हम उसी किसान की भाषा में बोल करके, उस किसान की बात को करके हम पूरे देश को पहुंचाना चाहते हैं, एक समन्वय बनाना चाहते हैं, किसान, देश की सेना और जेएनयू का छात्र।
सनी, मैंने आपको देखा था कि आप एक तिरंगा झंडा लहरा रहे, तो जेएनयू मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, तो इसकी कोई खास वजह थी?
इसकी खास वजह ये थी कि क्योंकि हमें बदनाम किया जा रहा था हमारे की इंस्टीट्यूशन को, हम उस तिरंगे को अपने साथ लेकर, वो जो तिरंगा जो 150 साल के स्ट्रगल का पार्ट रहा है, उनके बीच में लेकर हम कन्हैया के साथ खड़े थे।
वलीउल्लाह साहब, आपके हिसाब से जो पूरी स्पीच थी उसमें प्रधानमंत्री के बारे में भी चुटकी ली है, स्मृति ईरानी जी पे चुटकी ली है, तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि कन्हैया डरे हुए हैं?
देखिए, कन्हैया ने ये निश्चित तौर पर अपनी स्पीच में सारी बात रख दी कि हम कोई जेल और उनके केसों से डरने वाले लोग नहीं है। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया, श्रीमती ईरानी जी ने जो बोला झूठ, उस झूठ को उन्होंने पर्दा साफ किया है।
कुणाल, आपको भी लगता है क्या कि ये जो पूरी की पूरी स्पीच थी वो एक स्टूडेंट लीडर की स्पीच नहीं थी बल्कि एक विपक्ष के नेता के जैसी स्पीच थी?
देखिए, ये स्टूडेंट लीडर का ही स्पीच था जो देश के जनता के साथ, देश के स्टूडेंटों के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से स्कॉलरशिप में फंड कट हो रहे हैं, सेना के मुद्दे पे उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली लोगों को देश के बारे में कि राष्ट्रवाद और एंटी नेशनलिस्ट के का टैग जेएनयू के ऊपर लगाया जा रहा है, उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपनी बातों में रखा।
जयंत, आप मीडिया के छात्र हैं, एमफिल कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मीडिया पे भी बहुत चुटकियां ली हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि जब ये भीड़ आ रही थी गंगा ढाबा से, तो बड़ी मात्रा में छात्र जो एक बड़े रिपोर्टर थे तो उनके कैमरे के पास चले गए। तो क्या मीडिया कई तरह से नहीं इम्पैक्ट कर रहा है जेएनयू के इस पूरे आंदोलन को?
देखिए, आज के मौजूदा दौर में मीडिया बहुत सारी चीजों को तय कर रहा है, एक विमर्श खड़ा करने में वो उसको मैग्नीफाई भी कर रहा है और
गलत हो या सही,
बिल्कुल उसकी जो एक बेहतरीन ढंग से उसका इस्तेमाल जो किया जा सकता है विवेकपूर्ण ढंग से, वो एक अच्छी दूरदर्शी समझ वाला नेता जानता है।
कादरी साहब, आप बताइए कि क्या जेएनयू को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है?
जो भाषा हम बोलते हैं वो आम आदमी तक जा नहीं पाती है, तो थोड़ी सी भाषा के अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए।
लेकिन अमित, आपको नहीं लगता कि भाषा के अलावा भी जेएनयू को कुछ कुछ बदलने की जरूरत है?
किसी चीज़ को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें जनता की भाषा में जनता को, जनता के मुद्दों को समझाने की जरूरत।
तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जेएनयू जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी क्या रणनीति होती है इस पूरे मामले को लेकर या जनता तक पहुंचने को लेकर। लेकिन इस पूरे डिबेट में एक बात कई छात्र ये भी मान रहे हैं कि जेएनयू के इस मूवमेंट को ही नहीं बल्कि पूरे जेएनयू को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो जो बात कहते हैं क्या वो वैसी ही पहुँचती है आम जनता तक या नहीं पहुँचती है। सुशील झा, BBC दिल्ली।
और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों ने इस खबर को किन शब्दों में छापा है। मानसी दास।
नवभारत टाइम्स ने कहा है कि जेएनयू में उमर पर आज कन्हैया को क्लीन चिट। अखबार ने कन्हैया कुमार के जेएनयू में दिए भाषण की एक तस्वीर भी छापी है। उधर अमर उजाला ने खबर दी है कि रिहा होते ही बोला कन्हैया, भारत से नहीं भारत में आज़ादी मांगी। हिंदुस्तान ने भी इसी शीर्षक को लिखते हुए कहा है कि भारत से नहीं भारत में आज़ादी मिले। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इसी शीर्षक में खबर छापी है, कहा है वी वांट आज़ादी इन इंडिया नॉट फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी का अखबार है, उसने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की बनाई जांच दल ने कहा है कि कन्हैया के खिलाफ सबूत नहीं है लेकिन उमर खालिद की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। हिंदी के अखबार जागरण ने खबर को पहले पन्ने पर जगह नहीं दी बल्कि आठवें पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने विषय से जुड़ी कुछ 4-5 खबरें छापी हैं। शीर्षक कुछ इस तरह हैं, कड़ी सुरक्षा में कन्हैया को लेकर जेएनयू पहुंची पुलिस, देश लूटने वालों से मांग रहे आज़ादी कन्हैया, दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में कन्हैया को क्लीन चिट। भास्कर ने पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में बोलने की आज़ादी शीर्षक के साथ संसद में मोदी के राहुल पर कटाक्ष और जेएनयू में कन्हैया कुमार का मोदी पर हमले को जगह दी है।
बहुत शुक्रिया। समाचार पत्रों की समीक्षा जारी रहेगी और क्या खबरें छपी हैं बताएंगे आगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कल संसद में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को आड़े हाथों लिया।
बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम बीक का कटोरा लेकर के निकले हो। जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज़्यादा चिक करके कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही
है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया लेकिन एक के बाद एक उन पर कई प्रहार किए।
कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच संसद में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर क्या कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश है या फिर दो बड़े राजनेताओं के बीच पर्सनैलिटी क्लैश यानी व्यक्तित्व का टकराव है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने समझने के लिए हमारी सहयोगी प्रगति सक्सेना ने वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर से बात की।
मुझे ऐसा लगता है चूंकि मोदी एक जबरदस्त बहुमत के साथ आए हैं तो कांग्रेस इससे पहले कभी इतनी कम सीटों पर नहीं थी, तो उनके लिए जरूरी था कि वो कुछ मुद्दे ऐसे उछालें ताकि वो चर्चा में रहें और कांग्रेस को एक बहुत छोटी पार्टी न मान लिया जाए। राहुल ने सफलतापूर्वक इसको संसद के जितने अधिवेशन हुए हैं अब तक किया है, उनके भाषणों को सुनकर लग रहा था कि उन्होंने अपने बोलने की कला में जबरदस्त सुधार किया है। जब मैंने मोदी का भाषण पूरा सुना, बोले बहुत अच्छा वो भी, लेकिन एक तकलीफ ये हो रही है कि हमारी जो संसद में बहस है व्यक्तित्वों के टकराव तक सीमित होती जा रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे इस देश के सामने है वो गौण हो गए।
कांग्रेस ने कहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार ने बजट पेश किया और वो हर कदम चुनावों को देखते हुए उठा रही है। कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही करती नजर आती है, तो दोनों पार्टियों में ये जो संसद में ये टकराव है, ये क्या ये भी एक चुनावी तिकड़म ही तो नहीं है?
लोकसभा के चुनाव का गणित अलग होता है और विधानसभाओं के चुनाव के गणित अलग होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिल्ली में सारी सीटें लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती और एमएलए के चुनाव में उनका ये हाल नहीं होता, वही बिहार के चुनावों ने साबित किया, तो ये मानना थोड़ा गलत होगा।
कांग्रेस जिस तरह का रुख दिखा रही है या जो भी आक्रामक रवैया है संसद में विपक्ष का, तो क्या मोदी जी के भाषण, क्योंकि मोदी जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया अपने वक्तव्य में, राहुल ने जो भी सवाल पूछे थे उनका कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या मोदी जी अपनी सरकार के रुख का एजेंडा तय कर रहे थे कि वो भी आक्रामक ही रहेंगे और इस बार भी संसद में कोई फ्रूटफुल कार्रवाई नहीं होगी?
पार्टियां पीछे रह गई हैं और व्यक्ति और उनकी पर्सनैलिटीज आगे आ गई हैं। आप अगर देखिए तो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी देश को बहुमत संपन्न पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन वहाँ पहले से दसवें नंबर पर सिर्फ मोदी और मोदी होता है। तो जब व्यक्तित्वों के पीछे पार्टियां खड़ी हो जाती हैं तो जाहिर उन व्यक्तित्वों की भी मजबूरी हो जाती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को आगे रखें। ये संसद अब तक जितना चली है उतनी वो मुद्दों से ज्यादा व्यक्तित्वों और देश हित से कहीं ज्यादा राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होकर रह गई।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को एक ही कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि देने के मामले में नोटिस जारी किया है। वैसे तो ये मामला लगभग 15 साल पुराना है और इस पर पहले भी याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इन नेताओं को याचिका पर कोई जवाब दाखिल नहीं करने की वजह से कड़ी फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते अपने गृह जनपद इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हैबरा को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की थी। मामले को लेकर उस समय काफी विवाद हुआ था और आखिरकार ये मामला जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। याचिका पर साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से जवाब मांगा था, मगर 8 साल बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया। अब एक अन्य याचिका के माध्यम से जब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया, तब चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने इन दोनों नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए हलफनामा दायर करने का आदेश जारी किया है। साल 2005 में इस बारे में याचिका दायर करने वाले वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी बताते हैं,
कॉलेज में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सिर्फ उनके परिवार के मेंबर ही है। अब वो ऑलरेडी उसकी जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में सीधी आई है, उसकी जांच अभी नहीं, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में उसको मेंशन जरूर किया है, तो उस पर जजमेंट 10 फरवरी 2009 से सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। वो जजमेंट जब डिलीवर होगा तो सीबीआई को आरसी करके प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब क्रिमिनल इंक्वायरी पूरी करने के बाद वो सीबीआई परमिशन मांगने गई थी रेगुलर एफआईआर के लिए, उस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10 फरवरी 2009 को जजमेंट रिजर्व हो गया। अब 10 फरवरी 2009 से अभी तक जजमेंट रिजर्व है। ये चूंकि पिटीशन जो फाइल हुई थी इस पर इन्होंने 8 सालों से काउंटर नहीं फाइल किया था।
दरअसल मुलायम के गांव सैफई के पास ही हैबरा नाम की जगह पर चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज है, इसे यादव परिवार ही चलाता है। साल 2004 में मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने उस कॉलेज को सरकार के आकस्मिक फंड से 100 करोड़ रुपए दिए थे। इटावा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाह के कहते हैं,
ये पूरा का पूरा मामला मुलायम सिंह यादव के साल 2003 से लेकर के साल 2007 के मुख्यमंत्री काल के दौरान का है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने उच्च शिक्षा का तकरीबन 99 करोड़ रुपए जो था वो अकेले इटावा जिले के एफआई के पास स्थित चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय को अनुदान के तौर पर दे दिया था। उस वक्त के जो भी राजनेता थे विपक्ष के, उन्होंने तमाम सवाल जवाब खड़े किए थे, तमाम आपत्तियां उठाई थी इस बाबत कि पूरे प्रदेश का पैसा इस स्कूल में क्यों लगा दिया गया। बाद में इसमें याचिकाएं दायर हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ साल 2007 में आय से अधिक संपत्ति के मामले की जाँच सीबीआई से कराने का आदेश जारी किया था। यह आदेश विश्वनाथ चतुर्वेदी की ही याचिका पर दिया गया था। सीबीआई ने अनुदान वाले मामले में भी छानबीन की थी। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी इतने लंबे समय तक जवाब क्यों नहीं फाइल किया गया। बकौल विश्वनाथ चतुर्वेदी,
इसकी वजह यह है कि 2011 में जो सुनने वाले जज हैं, जोसफ साहब, वो रिटायर कर गए थे। कोर्ट में तकनीकी ये है कि सीबीआई भी उसे मेंशन कर सकती है, तो सीबीआई ने चूंकि उसको मेंशन नहीं किया और वो जजमेंट अभी तक रिजर्व है, उसी के सहारे सरकारें रन करती रही।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में काफी तल्ख टिप्पणी की है और दोनों नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
समीर आत्मज मिश्र की इस रिपोर्ट के बाद अब वादे के मुताबिक अखबारों की समीक्षा को जारी रखते हैं। मानसी दास, और क्या कुछ छपा है अखबारों में आज?
संदीप जी, आज लगभग सभी अखबारों में मोदी के राहुल पर हमले की बात को ही प्रमुखता से छापा गया है। साथ में कन्हैया कुमार की खबरें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जनसत्ता ने छापा है कि हीन भावना के मारे हैं राहुल, ये मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष में कोई ताकतवर नहीं बन पाए, विपक्ष में कोई होनहार नहीं बनना चाहिए, कोई तेजस्वी नहीं दिखना चाहिए, उनकी प्रतिभा का परिचय देश को नहीं हो पाए, यह हीन भावना है। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी के अखबार ने कहा है कि ने खबर छापी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लोढ़ा समिति की सिफारिशें मान लेनी चाहिए। इधर दैनिक भास्कर की एक खबर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। प्रियंका गांधी को यूपी में सीएम प्रत्याशी बनाने का सुझाव दिया है प्रशांत किशोर ने। हालांकि पार्टी ने अभी इस संबंध में किसी तरह की अधिकृत घोषणा नहीं की है। उधर नई दुनिया में डॉक्टरों ने एक सर्जिकल ब्लेड बच्ची के शरीर में छोड़ा जिससे बच्ची की मौत हो गई। मध्य प्रदेश से आई ये बच्ची 2 साल की बच्ची थी, जिसका जो इलाज करने के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल ब्लेड उसके शरीर में ही छोड़ दिया। दैनिक जागरण में एक और खबर है कि सरकारी निजी क्षेत्र में नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।
बहुत शुक्रिया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आज है शुक्रवार 4 मार्च। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। और अब शुक्रवार की तरह, हर शुक्रवार की तरह, वक्त हो चला है ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी सुनने का।
लोकतंत्र का एक्सपोर्ट अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिजनेस रहा है। जरूरत हो या ना हो, अमेरिका बेच रहा है तो दुनिया को खरीदना भी पड़ता है। आईफोन और सैमसंग के मॉडल्स की तरह हर मुल्क की जरूरत के हिसाब से वो लोकतंत्र के मॉडल बनाता है। पाकिस्तान के लिए अलग, मिस्र के लिए अलग, इराक के लिए अलग, और जहां उसके बनाए मॉडल में कुछ खराबी आ जाती है तो वो उसकी मरम्मत भी करता रहता है। कौन इतनी मेहनत करता है दूसरों के लिए? ऐसी कस्टमर सर्विस पर तो कुर्बान हो जाए इंसान, लेकिन दुनिया एहसान फरामोश है, क्या कीजिएगा। लेकिन इन दिनों लोकतंत्र का जो मॉडल यहाँ अमरीका में बरसों से काम करता रहा है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। पार्टी के मसनद नशीनों की माने तो ये सब ट्रंप नाम के एक वायरस की वजह से हो रहा है। उन्हें डर है कि ये वायरस उनकी पार्टी के मदरबोर्ड को तबाह कर देगा। उन्हें उम्मीद थी कि एक दो बार हिलाएंगे डुलाएंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो शायद ये वायरस अपनी मौत मर जाएगा, लेकिन सुपर ट्यूजडे के बाद तो उसके तेवर और आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो अब पूरे मॉडल के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। पार्टी के कई दिग्गजों ने ट्रंप के खिलाफ जिहाद छेड़ दी है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं मिट रॉमनी, जो 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ओबामा के खिलाफ खड़े हुए थे और हार गए थे। अब वो रिपब्लिकन वोटरों और पार्टी से अपील कर रहे हैं कि मुल्क को बचाना है तो ट्रंप से दूर रहें। वैसे रॉमनी साहब 2012 में ट्रंप से मदद मांग रहे थे, और जब ट्रंप ने टीवी पर आकर उनके साथ खड़े होकर उन्हें अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया तो रॉमनी साहब उनके एहसान तले दबे जा रहे थे। दरअसल मौजूदा मॉडल ये था कि आपको जो करना हो करें, जो कहना हो कहें, लेकिन जरा संभाल कर चाशनी लपेट कर। लेकिन ट्रंप ने वही बातें बिना लाग लपेट के कहनी शुरू कर दी, वैसे ही जैसे फोन स्पीकर मोड पर डाल दिया गया हो, और जब ट्रेन के भरे हुए डब्बे में आपके स्पीकर से मसालेदार बातें निकल रही हों तो जाहिर है डब्बे के अंदर की भीड़ अपना कान उधर ही लगा देगी। पहेलियां बुझाना छोड़कर मिसाल देता हूं आपको। दूसरे उम्मीदवार और पार्टी के कई बड़े नेता कहते रहे हैं कि मेक्सिको से गैरकानूनी तरीके से आने वालों पर रोक लगाओ, जो आ गए हैं उन्हें वापस भेजो। ट्रंप कहते हैं एक दीवार खड़ी कर दो, कोई आ ही ना सके। पार्टी के नेता कहते हैं सीरिया इराक में इतना बम बरसाओ कि जमीन सपाट हो जाए, यानी बच्चे बूढ़े बेगुनाह जो भी उसकी चपेट में आए उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप सभी मुसलमानों को कुछ वक्त के लिए अमेरिका में घुसने से रोकने की बात करते हैं, तो बस डिग्री का फर्क है। ट्रंप वही बातें लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं जो पार्टी कई बार फुसफुसा कर कहती है। उन्होंने पार्टी के दुलारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को झूठा करार देते हुए कहा कि इराक पर हमला एक गलत फैसला था। अब ये बात तो पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की कोशिश करने वाला बंदा ये कहे तो लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट करने जा रहा है, अपना ही घर जलाने जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि रिपब्लिकन वोटरों की एक बड़ी तादाद है जिसे लाउड स्पीकर पर ब्रॉडकास्ट हो रहा ये अक्खड़पन काफी भा रहा है। लोकतंत्र का ये मॉडल ऐसे बनाया गया था कि जनता अपनी मन मर्जी की कर सके, या फिर कम से कम उसे ऐसा लगे कि वो अपनी मन मर्जी की कर रही है। अब पार्टी के कर्ता धरता जनता से खुलकर कह रहे हैं कि वो जो भी कर रही है वो गलत है। किसी और उम्मीदवार के लिए जनता इतना जोश दिखा रही होती तो पार्टी कहती ये सही मायने में लोकतंत्र की जीत है। देखा जाए तो ट्रंप उस जिन्न की तरह बन गए हैं जिसने अलादीन का हुक्म मानना छोड़ दिया है। अब कोशिश इस बात की हो रही है कि इस जिन्न को वापस बोतल में बंद किया जाए, लेकिन वो काम कितना मुश्किल है ये सबको पता है, और बोतल के टूटने का भी पूरा खतरा है। देखिए क्या होता है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
क्या परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने से मजबूत होंगी महिलाएं? भारत जैसे परंपरागत समाज में क्या महिलाएं आज़ादी महसूस करती हैं? विश्व महिला दिवस से पहले इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 5 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1-800-11-7000 और 1-800-102-7001 पर।
और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत करेंगे। निर्वाचन आयोग राज्यसभा की 13 सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन संबंधी चुनाव की अधिसूचना आज जारी करेगा। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत कारोबारी नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री DN राव और 13 अन्य लोगों पर आरोप तय करने संबंधी CBI की चार्जशीट पर आज सुनवाई कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन सीरिया में जारी संघर्ष विराम पर आज ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला और जर्मनी की चांसलर एंगला मर्कल से बात करने वाले हैं। खेलों की बात करें तो एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत ने एशिया कप के आखिरी लीग मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराकर एक आसान जीत दर्ज की। 82 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने निर्धारित स्कोर 10.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुका है। उधर ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का कल निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे मार्टिन क्रो सितंबर 2014 में ब्लड कैंसर लिम्फोमा की चपेट में आए थे, लेकिन उसके बाद वो उससे उभर नहीं पाए। मार्टिन क्रो ने 1982 से 1995 के बीच अपने 13 बरस के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 77 टेस्ट में 45.36 की औसत से 5,444 रन बनाए। वहीं वनडे में 143 मैचों में क्रो ने 4,704 रन बनाए, जिसमें 34 अर्धशतक और 4 शतक शामिल थे। वहीं बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और परुपल्ली कश्यप ने जर्मन ग्रोपरी गोल्ड की पुरुष एकल स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
7 बजने वाले हैं। कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
BBC समाचार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार जमानत मिलने के बाद गुरुवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकलकर जेएलयू पहुंचे। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है कि संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एडुआर्डो क्यूना को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना होगा। स्पेन की राजकुमारी क्रिस्टीना कथित तौर पर टैक्स धोखाधड़ी के मामले में पहली बार अदालत में गवाह के रूप में पेश हुई। अमरीका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में पिछले 2 सालों में शामिल हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिट रोमनी और जॉन मैककेन ने डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक 1 घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।